بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحزن، درس نمبر 6. میں نے آپ کو کل نگیٹو تھاٹس کے بارے میں ایک کلپ بھیجا تھا، آڈیو کلپ، جو ہماری ایک پچھلی سیریز ہے پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ، جس کے 18 سیشنز ہم لوگوں نے چلائے تھے رمضان میں، اور یہ اس کا ایک آڈیو کلپ تھا. لیکن وہ مجھے ایسا لگا کہ دوبارہ سے اگر میں وہ نگیٹو تھاٹس کی باتیں ریپیٹ کروں گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس پہ میں آلریڈی اتنی ریسرچ کر چکی تھی اور اس کتاب میں سے کافی ڈیٹیل میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو وہ بھیجا. تو نگیٹو تھاٹس اس کی انڈرسٹینڈنگ دے کر میں یہ چاہتی تھی کہ آج کا جو ٹاپک ہے، جو قدرے مشکل ٹاپک ہے، کیونکہ کل میں نے یہ دو دفعہ ریکارڈ کرا کے 5-5 منٹ، 6-6 منٹ، اور پھر میں نے یہ ڈیلیٹ کیا ہے کیونکہ وہ بات بن نہیں رہی تھی. مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی تیار نہیں کیا اور میں آپ کو ذرا ایک بھاری بات سمجھانے والی ہوں، اسی لیے میں نے وہ نگیٹو تھاٹس کا جو سیشن ہے وہ بھیجا تھا. امید ہے آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا. تو آج کا جو سیشن ہے، میں نے اس جو استاد القرنی کی جو کتاب ہے ڈونٹ بی سیڈ یا لا تحزن، اس میں سے بھی میں نے کافی سارے چیپٹرز نکالے ہیں جو میں نے سارے کمپوز کیے ہیں اس ایک سیشن میں. اور اس کا نام میں نے یہ رکھا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ریئل انڈرسٹینڈنگ. تو غم جو ہے یا ہماری پریشانی جو ہے، دراصل وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کسی سچویشن کی اور ایک ریالٹی جو ہے، اس سچویشن کی جو ریالٹی ہوتی ہے اس میں جو فاصلہ ہوتا ہے، تو دراصل وہ فاصلہ جو ہے وہ ہمارا وہ غم یا پریشانی یا ہماری فرسٹریشن ڈٹرمن کرتا ہے. جتنا بڑا وہ فاصلہ ہوگا اتنے ہی ہم زیادہ غمگین ہوں گے، اتنے ہم زیادہ ڈپریس ہوں گے، اتنے ہم زیادہ فرسٹریٹ ہوں گے ایک سچویشن میں. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت سی سچویشنس کی ہوتی ہے، ہمیں ایک بیس لائن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. مسئلہ تب بنتا ہے جب کہ ہم ایک انڈرسٹینڈنگ ایسے سورسز سے بنا لیں جو ہمارے انر سورسز نہ ہوں. ہم باہر کی دنیا کی باتیں سن سن کے اپنا ایک امپریشن بنائیں اور ہم اس اپنے امپریشن کو پھر انڈرسٹینڈنگ سمجھیں. یہ جب میں آپ کو مثالیں دوں گی تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گا. لیکن جیسے کہ جب میں کسی سے کوئی بات سنتی ہوں، یا میں گوگل پہ کوئی بات پڑھتی ہوں، یا میں اخبار میں کچھ پڑھتی ہوں، یا میں ٹی وی پہ ایک اشتہار دیکھتی ہوں، یا میں ایک بل بورڈ پہ کوئی بات لکھی بھی پڑھتی ہوں، تو وہ میری نالج ہے، وہ معلومات ہیں. مجھے ایک چیز کے بارے میں خبر مل جاتی ہے، جس کو عربی میں نبا کہتے ہیں. نبی جو ہے وہ ہے خبر دینے والا. تو مجھے ایک خبر مل جاتی ہے اور مجھے ایک نالج مل جاتی ہے. نالج کا مسئلہ کیا ہے؟ جیسے آئنسٹائن نے کہا ہے کہ دنیا میں نالج رکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اصل کمی جو دنیا میں ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے لوگوں کی. تو ہماری بھی اصل ٹریجڈی یہ ہے، ہمارا غم اور ہمارا حزن اور ہماری فرسٹریشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں پہ ہم اپنی اس سپرفیشل نالج کو اور اس سطحی باتوں کو ہم لوگ ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں جب کسی بات کے بارے میں خبر ملتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے یہ دراصل اب ہمیں پوری بات سمجھ آ گئی ہے، جبکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. اس کے لیے اب جو سب سے پہلی مثال میں آپ کو دینے جا رہی ہوں وہ ایک مینٹل ایکسرسائز ہے. آپ سوچیں، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید فون پہ یہ سن رہے ہیں، یا آپ نے ہیڈ فونس یا ہینڈس فری یا کوئی لگایا ہوا ہے کوئی انسٹرومنٹ جس کے ذریعے آپ میری یہ بات سن رہے ہیں. تو آپ دیکھیں ذرا، اپنے کانوں کو دیکھیں. اگر کل میں آپ کا ایک کان کاٹ لوں، مثلا کان میں نے آپ کا کاٹ لیا، تو کیا آپ وہ نہیں رہیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں ختم ہو گئی ہوں یا میں ختم ہو گیا ہوں، یا آپ کہیں گے کہ میرا کان کٹ گیا ہے؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ میرا کان کٹ گیا ہے، میرا کان ضائع ہو گیا ہے. پھر اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ایک ہاتھ کٹ جائے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ میرا وجود ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ میرا ایک ہاتھ ختم ہو گیا ہے، میرا ہاتھ کٹ گیا ہے. میں تو ہوں، میں تو ابھی زندہ ہوں، اور میں تو باتیں بھی کر رہی ہوں، اور میں سب پروسیسنگ بھی کر رہی ہوں. مجھے کافی ایک اچھی لیول تک میں فنکشن بھی کر سکتی ہوں اپنے اس ہاتھ کے بغیر، لیکن اب میرا ایک ہاتھ ضائع ہو چکا ہے. तो आखिर वो कौन सी चीज़ है हम में जो हमें हम बनाती है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब अगर वो ख़त्म हो गई तो हम ये कहेंगे कि हम ख़त्म हो गए। तो इसका बहुत आसान जवाब है, कोई लोग कहेंगे कि अगर मेरा दिमाग ख़त्म हो गया तो मैं कहूँगा कि बस मैं ख़त्म हो गया। कोई लोग कहेंगे हमारी रूह जब निकल जाएगी तो हम कहेंगे कि हम ख़त्म हो गए। कुछ लोग ये कहेंगे कि जो लाइफ एनर्जी हम में है और जो हमारी स्पिरिट है जब ये चली जाएगी तो हम ये कहेंगे कि हम ख़त्म हो गए। हिंदू अकीदा रखने वाले लोग जो हैं वो कहेंगे जब हमारी आत्मा जो है वो शरीर से जुदा हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हम ख़त्म हो गए। मुसलमान कहेंगे कि जब हमारी रूह हमारे जिस्म को, ये जस्ते खाकी जो है मिट्टी का जिस्म, जब इसे छोड़ जाएगी तो हम कहेंगे कि हम ख़त्म हो गए। इसी तरह बुद्ध मत वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि जब ये जिस्म ख़त्म हो जाता है तो इसके अंदर जो एक विल होती है और इसके अंदर की जो एक खूबसूरत इंटेलिजेंस है वो जाके यूनिवर्सल इंटेलिजेंस में मिल जाती है और वो उसके साथ एक हो जाती है और ये जिस्म जो है ये ख़त्म हो जाता है और इंसान की ज़ात ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि हम जो हैं, यानी मैं हूँ, मैं अफशां हूँ, या आप हैं, आप भी कोई हैं, या मेरे बच्चे हैं, या आपके बच्चे हैं, आपके मियाँ बीवी हैं, हम सब जो हैं हम असल में अपनी रूहें हैं। हम अपने जिस्म नहीं हैं, हम अपने बाल नहीं हैं, हम अपने शक्लें नहीं हैं, हम अपने कपड़े नहीं हैं, हम अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं, हम अपने घर नहीं हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं। वैसे मोबाइल फ़ोन्स तो काफ़ी हद तक हमारे वजूद का हिस्सा बन गए, लेकिन यू नो सीरियसली हम दरअसल अपनी रूह हैं। अब वो रूह जो है वो कहाँ पाई जाती है, ये रूह आखिर है कहाँ? अगर हमने इस ज़िंदगी में खुश रहना है और अगर हमने रियली हुज़न से बचना है तो हमने अपनी इस रूह को हुज़न से बचाना है। तो कुरान में है कि वह यसअलूनका अनिर रूह, वो आपसे पूछते हैं रूह के बारे में, कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, उनको कहें कि ये रूह जो है ये अल्लाह का अमर है। तो रूह एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हम में फूंकी है और अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है फनफखा रूह, यानि उसके अंदर मैंने फूंकी अपनी रूह, ये भी कुरान में है। तो रूह जो है ये हमारे अंदर अल्लाह का एक ऐसा अमर है कि जब ये हमारे इस मिट्टी के जिस्म को छोड़ जाएगा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। हमारी असली शनाख्त, हमारी असली जो ज़ात है और हमारी असली रिकग्निशन जो है वो ये रूह है। और अगर हमने हुज़न से बचना है और हमने अगर गम से बचना है और हमने एक खुश और हशाश बशाश ज़िंदगी गुजारनी है जो ला तहज़न का मकसद है, तो वो ये है कि हमें अपनी इस रूह को खुश रखना होगा, हमें अपनी इस रूह को इसकी नशोनुमा करनी होगी, इसे पालना होगा, इसे प्यार से रखना होगा और फिर हम जो हैं तो एक हुज़न से खाली और एक अच्छी खुश ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हम अपनी रूह को कैसे खुश करें? अब हम देखें, अब हम अपने आप को खुश करने के लिए क्या करते हैं? हम कहते हैं ना कि चलें जी मैं अपने आप को कुछ खुश करना चाहती हूँ, आई नीड टू रिलैक्स, आई नीड अ ब्रेक, मैं ऐसा कोई काम करना चाहती हूँ कि बस मैं बिल्कुल चिल हो जाऊँ, टेक अ चिल पिल। मैं अपने ऐसी बातें करते हैं ना हम लोग कि हम अपने आप को खुश करने के लिए क्या करते हैं। तो क्या हम अच्छा लिबास पहनते हैं, करते हैं, जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदते हैं, वो पहनते हैं, हम कहते हैं हम इन्हें पहन के खुश हो जाएंगे। फिर हम अच्छे अच्छे बाल बनाते हैं, अच्छे अच्छे हेयर कट कराते हैं, बाल रंगवाते हैं, बालों में वेव्स डालते हैं या उन्हें स्ट्रेट कर देते हैं, या मर्द हजरात भी शायद कुछ करते होंगे अपने बालों में, तो वो हम कहते हैं कि हाँ आई नीड अ न्यू हेयर कट, यू नो आई नीड अ चेंज, तो फिर मैं खुश हो जाऊँगी और मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। फिर हम जैसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स ख़रीदते हैं, हम समझते हैं कि जब हम जाएंगे और शॉपिंग करेंगे और हम माइकल कोर का बैग ख़रीदेंगे और हम जो है तो क्रिस्टीज़ के कोई नवादरात हमारे पास होंगे और राफ लॉरेन की हमारे पास जैकेट होगी और जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं अल्लाह आलम बहुत सारे हैं और फलां के जूते होंगे हमारे पास, तो हम बहुत खुश होंगे। ये चीज़ जो है तो हमें एक बड़ी ज़बरदस्त खुशी अता करेगी। अच्छे खाने खाते हैं हम, हैं जी। सो इट्स अ वीकेंड, लेट्स गो आउट एंड यू नो ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट। हम जाते हैं वहाँ पे और एक नया जायका हम टेस्ट करते हैं और अपने अपने लिए एक ट्रीट करते हैं, तो क्या वो खुशी हमें दे सकती है वो चीज़। फिर हम लोगों से बातें करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, बुरी बातें भी करते हैं, यहाँ तक कि बातें कर कर के थक जाते हैं। तो क्या वो हमारी हमें खुश कर सकती हैं ये हरकतें? ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने बोली हैं, ये वो बातें हैं जो हम सब करते हैं। और हम सब ये बातें हम इसलिए करते हैं कि हम हमारी नॉलेज में ये है कि हम ये काम करके खुश हो जाएंगे। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आखिर हमारी हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इस बात की। अभी अभी हमने मिल कर के एक अंडरस्टैंडिंग अचीव की कि ये जो मेरा हाथ पैर हैं और मेरे बाल हैं और मेरा चेहरा है और मेरा जिस्म है और मेरे नाखून हैं, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। ये तो सबके एक जैसे हैं, ये तो सबके पास हैं, और ये तो गोश्त के और मिट्टी के और प्रोटीन के और हड्डियों के बने हुए हैं। ये तो मैं नहीं हूँ, मैं तो एक बड़ी कीमती चीज़ हूँ, मैं तो अल्लाह का अमर हूँ। और मैं तो जब अगर मैं इस मिट्टी के ढेर में से निकल गई तो ये मिट्टी का ढेर तो उधर ही गिर जाएगा, फिर लोग कहेंगे जी डेड बॉडी है और इसको कफन करें, कफन दफन करें, इसको संभालें, दफा करें इससे सामने से। तो रियली वो जो मैं हूँ, जो मेरी रूह है, उसको खुश करने के लिए मैं क्या करती हूँ? और जब मैं फिर खुश नहीं होती, जैसे हम में से बेशतर लोग ये सारे काम करने के बावजूद हम लोग जो हैं तो हुज़न में और डिप्रेशन में और स्ट्रेस में मुब्तला होते हैं, तो रियल अंडरस्टैंडिंग आखिर क्या है? आखिर खुशी की रियल अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो उसके लिए मैं आपको दो ज़रा डिफ़िकल्ट बातें बताऊंगी। पहली बात तो ये है कि आपने सुकून और आराम में फ़र्क सीखना है। सुकून का मतलब ये है सकना, सीन काफ नून, ठहर जाना, रुक जाना, अमन में आ जाना, आराम से, खामोशी, इसको सुकून कहते हैं, ठीक है जी। और एक है आराम, है जी। तो आराम जो है वो एक मटेरियल टर्म है। आराम जो है हम हासिल करते हैं, हम एसी ऑन करते हैं, हम हीटर ऑन करते हैं, हम बल्ब जलाते हैं, हम शॉल ओढ़ते हैं, हम नरम सोफ़े पे बैठते हैं, हम आरामदेह जूते पहनते हैं, हम आरामदेह कपड़े पहनते हैं, हम आरामदेह गाड़ियों में बैठ के सवारियां करते हैं। आराम जो है ये एक मटेरियल टर्म है। जब हम आराम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो आराम जो है वो कम्फर्ट है। आराम कंफर्ट को कहते हैं। और जो चीज़ें हमें हमारे जिस्म को और हमारी हड्डियों को और इन चीज़ों को कंफर्टेबल करती हैं वो हमारे आराम के रीजंस हैं। क्या आराम हासिल करके हमें सुकून भी मिल सकता है? इस सवाल का जवाब अब हम सब ने अपने दिल पे हाथ रख के देना है कि हम जितने आराम से रहते हैं, एसीज़ में रहते हैं और एयर कंडीशन कारें भी हैं हमारी, और हमारे प्यारे प्यारे सोफ़े हैं और कालीने हैं और हमारे नरम नरम ब्रांडेड कपड़े हैं और जूते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों के होते हुए क्या हम पुरसुकून हैं? क्या हम सुकून में हैं? जो कंफर्ट तो है हमारे पास, लेकिन जिस चीज़ की हम तलाश में हैं, जो ला तहज़न जो है कि तुम गम ना करो, तुम हुज़न ना करो, तो जब हम हुज़न नहीं करेंगे तो हम मुतमईन होंगे, हम सुकून से होंगे। तो क्या जब हम आराम में होते हैं उस वक्त हम सुकून में भी होते हैं और उस वक्त हम इत्मीनान में भी होते हैं? तो मैं तो आपको सिर्फ मैं अपने लिए जवाब दे सकती हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी जो टीचर, मैं कंफर्टेबल होते हुए भी काफ़ी एट पीस नहीं होती, मुझे सुकून नहीं होता, मेरा जहन सुकून से नहीं होता। और जहन का सुकून जो है, ज़ाहिर हम दिमाग की बात कर रहे होते हैं या हम रूह की बात कर रहे होते हैं, कि वो बेसुकून होती है। तो ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट, बहुत ही एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है आराम और सुकून का। लेकिन उसका एक आसान फार्मूला बुज़ुर्गों ने बताया है कि आराम जो है वो तुम अपने लिए हासिल करते हो, आराम तुम दूसरी चीज़ों से हासिल करते हो, और सुकून जो है ये तुम और लोगों में बांट कर हासिल करते हो। तो ये आपने एक बात अपनी बस आप गिरह में बांध लें, हैं दुपट्टे में, अपनी चादर में, अपने कमीज़ में, दामन में, ये बात जेब में आप डाल लें। आराम हम दूसरी चीज़ों से हासिल करते हैं, मटीरियल चीज़ों से। सुकून जब हम औरों को देते हैं तो हमें सुकून मिलता है, ये बात याद रखें। ठीक है जी, दूसरी बात जो मैंने आपको समझानी थी, जो मैंने अभी आपको अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क बताया है, और फिर मैंने हमने मिल के बल्कि एक होमवर्क किया और कोशिश की कि हम समझें कि आखिर हम जो हैं, हम में ऐसी क्या बात है जो हमको हम बनाती है, और वो हमारी रूह है, वो अल्लाह का वो अमर है जो हमारे अंदर है। जब हम अपनी रूह को खुश रखेंगे तो हम अंदर से खुश रहेंगे, हम मुतमईन होंगे, हम सुकून में होंगे। और सुकून एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं किसी को, अगर मैं आपको कहूँ कि आए जी आप मेरे, मुझे 1,00,000 रुपए दें, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 1 साल सुकून से रहेंगे, मुझे कोई शक नहीं है कि आप आके मुझे देंगे वो पैसे। इतना ज़्यादा लोग सुकून की तलाश में होते हैं। तो ये जो हमारी रूह है, ये रूह कहाँ पाई जाती है, पहले भी हम प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट में पढ़ चुके हैं। दुनिया के सारे अकीदों में ये रूह जो है ये दिल में रहती है, दिल में एक पॉइंट है जिसको कल्ब कहते हैं और जिस पे हिदायत का नुजूल होता है, और वो पॉइंट जो है वो रूह की सीट है, वहाँ पे रूह आके आराम करती है, वहाँ पे खुश रहती है, वहाँ अच्छी अच्छी बातें सोचती है, सुनती है, और वहाँ पे ये अपने खालिक के साथ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट होती है। और वो कल्ब जो है, वो पॉइंट जो है, जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट में हमने पढ़ा था कि वो पॉइंट जो है वो कैसे हम अपने लिए उस पॉइंट को फोकस कर सकते हैं, तो वो एक्सरसाइज जो है वो तक्वा है, वो अल्लाह ताला की अताअत गुजारी है और अल्लाह के अहकामात को बजा लाना है। तो तक्वा कैसे हासिल किया जाए, वो पूरा प्रोसेस है प्योरिफिकेशन का। लेकिन सिंपल अल्फाज में जिन लोगों ने प्योरिफिकेशन नहीं सुना हुआ उनके लिए मैं ये बता दूँ कि इंसान का दिल जो है कितना होता है, आप अपनी मुट्ठी बना के देखें ना, इतना आपका दिल है। ठीक है, इतने दिल में आपकी रूह ने रहना है। रूह कोई मामूली चीज़ तो नहीं है ना जी, ये अल्लाह का अमर है, और ये बड़ी एक परिंदे की तरह होती है, और ये बड़ी जल्दी उड़ जाती है, नाराज़ हो जाती है, और चूँ चूँ करती है, और चोंचे मारती है अंदर इंसान को, ज़मीर के कचौके, बड़ी एक बड़ी मर्क्यूरियल चीज़ है ये। तो वो रूह जो है वो आपके दिल में रहती है, और दिल में दूसरी क्या चीज़ रहती है, मसला क्या है कि इंसान जो गोश्त पोस्त का बना हुआ इंसान है, इसके साथ नफ्स लगा हुआ है, इसकी अपनी ख्वाहिशात लगी हुई हैं, इसकी अपनी शहवात लगी हुई हैं, इसकी डिज़ायर्स हैं, इसके ख्वाहिशात हैं, इसके लालच हैं, इसकी इसके ख्वाब हैं। ठीक है जी, जो सारे मिल के हमारा नफ्स बनाते हैं। तो नफ्स के बारे में बुज़ुर्गों का क्या कौल है कि नफ्स को कौन सी चीज़ें मोटा करती हैं, नफ्स को 3 चीज़ें मोटा करती हैं, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना। तो जब नफ्स मोटा हो जाता है तो वो रूह को वहाँ पे घोंट देता है। जिस दिल में नफ्स भरा हुआ हो, जिस दिल में ख्वाहिशात भरी हुई हों, जो मैंने आपको अभी बताई थी कि हम अपने आप को खुश करने के लिए कैसे कैसे ओंगे बोंगे काम करते हैं ना, हम अपने इस जिस्म को डेकोरेट करते हैं, अपने चेहरे को डेकोरेट करते हैं, अपने बालों को डेकोरेट करते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, अपने खानों को डेकोरेट करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि ये सब करने के बावजूद भी हमें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि इन चीज़ों का रूह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, तो ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो हमें हर एक्शन के बारे में होनी चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी खुशी की तलाश में, और हम सब खुशी का, हमारा हर मुंतहा मकसद हमारा खुशी होता है। हम पार्टी करते हैं कि हम खुश हो जाएं, हम सैर करते हैं कि हम खुश हो जाएं, हम जॉब करते हैं ताकि हमें तनख्वाह मिले, ताकि हम उसे बैंक में से निकाल के फिर शॉपिंग करें और खुश हो जाएं, हम शादी करते हैं कि हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी शेयर करें और वो हमारा बहुत ध्यान रखे और बहुत ख्याल रखे और हमारे बच्चे हों, हमारा एक प्यारा घर हो और हमारी बड़ा एक सोशल स्टेटस हो और फिर हम खुश हो जाएं। तो खुशी जो है वो जानते या ना जानते हुए हमारे हर काम का मुंतहा मकसद होता है। हमारा एम इन लाइफ जो है वो है खुश हो जाना, और खुश हो जाना जो है, जैसे वो ला तहज़न वाली बात है कि गम ना करो, खुश रहो। तो क्या खुशी उन चीज़ों में है जिनमें हम अपना 80% से ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं? आज का मेरा सवाल आप लोगों से ये है, जब बात मैंने शुरू की थी बहुत लंबी करके मैंने बात की है, और वो मैंने इसीलिए की है कि मुझे पता है कि ये बात समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम एक काम करना शुरू करें, अब तो हमें मतलब डिस्कस कर लिया है हमने कि हमारे जिस्म का और रूह का क्या ताल्लुक़ है, हमारी खुशी का हमारे जिस्म से कितना ताल्लुक़ है और हमारी रूह से उसका कितना ताल्लुक़ है, और फिर हमारी रूह जो है उसको कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचाती है, उसको नफ्स नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वो मोटा होता चला जाता है और वो दिल में भर जाता है और दिल में सारी बस ख्वाहिशात और शहवात और डिज़ायर्स भरी हुई होती हैं, और वो रूह जो है बेचारी वो कहीं घुट जाती है, और फिर जब हम अपनी सारी ख्वाहिशें भी पूरी कर लें बस वो बढ़ती चली जाती है, वो ख़त्म नहीं होती। क्योंकि देखें हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऐ इब्ने आदम तेरा मुंह कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भर सकती। तो वो यानी उन्होंने बुरा नहीं कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने ये कहा है कि इब्ने आदम जो है ये इतना बाय डिज़ाइन इतना लालची है और हर वक्त हाँ 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 इसको और चाहिए होता है, यू नो द वांट फॉर मोर। तो इसका मुंह जब कब्र की मिट्टी से भर जाएगा तो ये तभी बंद होगा, वरना ये फरमाइशें ही करता रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का एक फ़र्क मैं आपको बता रही थी कि हमारी नॉलेज हमें कभी कभी कितना नुकसान पहुंचा देती है, कि जब हमें कोई कहे कि आओ एक शॉपिंग करें और हम खुश हो जाएंगे तो हम अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते। अगर हम सिर्फ एक लम्हा रुक के ये सोचें कि इस शॉपिंग से मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरी रूह को क्या फ़ायदा होगा और मेरा अल्लाह कितना खुश होगा और मुझे कितना इत्मीनान मिलेगा, अगर हम एक लम्हा रुक के ये सोच लें ना। देखें जी, आजकल एवरेज बैग जो है मार्केट में जाके आप देख लें, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तोहफे मिलते हैं, थैंक यू, लेकिन एवरेज एक बैग जो है ना जी 5,000 रुपए से शुरू होता है और फिर चढ़ते जाएं आप उसमें, ठीक है। तो 5,000 रुपए, आप यकीन करें 5,000 रुपए जो है ना 4 लोगों की फैमिली का तकरीबन 2-3 हफ्ते का राशन है, डिसेंट राशन है, खाना खा सकते हैं वो उसमें बेफिक्र हो के, आराम से पेट भर के सो सकते हैं वो उसमें। हाँ, हमारे ये वो अच्छा, हाँ दूसरा ब्रांडेड जोड़े जो हैं, अब मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी क्योंकि लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया है कि वो तुम्हें सू कर देंगे। तो हमारे जितने भी ब्रांड हैं, प्यारे प्यारे ब्रांड हैं, अच्छी अच्छी लोने बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े एम्ब्रॉयडरीज वाले और मोतियों वाले और हीरे जवाहरात वाले जोड़े बनाते हैं, यकीन करें एक एक कमीज़ 3,000-4,000 से शुरू होती है। तो 4,000 यानी 4,000 रुपए की मैं एक कमीज़ पहन लूँ और फिर मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं खुश हो जाऊँगी। जो मेरी रूह है ना अंदर, जिसको सब कुछ पता है, मेरी रूह को ये भी पता है कि इसकी अलमारी में ऐसी 5 और कमीज़ें लटकी हुई हैं, उस रूह ने मुझे खुश नहीं होने देना। वो रूह जो है वो उसने अंदर से मुझे कहना है कि अच्छा आपने 6ठी कमीज़ भी ख़रीद ली, मैं देखती हूँ आपके साथ, मैं देखती हूँ आप कैसे खुश होती हैं। फिर वो हमें बेसुकून करती है, फिर वो रूह जो है वो हमारा सुकून ख़त्म कर देती है, वो हमें बार बार कचोके लगाती है, हैं जी, और इस हालत में कोई भी खुश नहीं रह सकता। तो ये अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज का फ़र्क है। अब एक और मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ज़रा सख्त एग्ज़ाम्पल है ये, लेकिन उसका भी डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो ला तहज़न से ही है, यही गम वाली बातें हैं। कि जब हमें ख़बर मिले, या मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, कि जैसे मुझे ये पता चला कि मेरे एक बहुत प्यारे रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी हैं, जो 3 साल से डायलिसिस पे थे और बड़ी पथेटिक उनकी लाइफ थी। हर हफ्ते उनकी फैमिली उनको दूर गांव से गाड़ी में डाल के डायलिसिस के लिए लाते थे और उनकी डायलिसिस होती थी, कभी फैमिली में लोग पैसे भर रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, बड़े मसले मसाइल थे उनके, बच्चा बेरोज़गार था। तो फिर वो फौत हो गए, वो रिश्तेदार जो थे या वो प्यारे जो थे वो फौत हो गए। तो वो ख़बर जब मुझे फ़ोन आया कि जी वो फौत हो गए या वो गुज़र गए, तो मेरे मुंह से पहली बात जो निकली वो ओ आए अल्लाह, और रोना, यू नो एक रिएक्शन जो मेरा था, क्यों था वो इस तरह। और ये नेचुरल रिएक्शन है, जब मौत की ख़बर मिलती है, किसी ट्रेजेडी की ख़बर मिलती है, अल्लाह हम सबको बड़ी ट्रेजेडी से बचा के रखे, लेकिन जब ऐसी एक ख़बर मिलती है ना तो हमारा रिएक्शन बेयकीनी का होता है। क्यों? वो हम सिर्फ नॉलेज पे काम कर रहे होते हैं ना। अब हम नॉलेज में ये हाय वो चले गए, अब हम उन्हें कभी नहीं देखेंगे, अब वो फौत हो गए, अब वो कब्र में चले जाएंगे, अब वो जो हैं तो उनके रिश्तेदार सारे रोएंगे। और बाज़ औक़ात तो अल्लाह माफ़ करे ये भी होता है कि अगर हम नहीं रोए तो लोग क्या कहेंगे। अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी की ट्रेजेडी का मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन मैं आपको वो रेंज बता रही हूँ उस वक्त रिएक्शंस की, जो एक रेंज होती है, जो ट्रू दुख होता है और आप दिल से चीखते हैं और आप नहीं करते हैं, और एक वो भी लिमिट है जहाँ पे किसी को रियलाइजेशन होती है लेकिन वो बेचारे इस दुख से कि हाय अल्लाह फिर लोग क्या कहेंगे, तो वो भी बेचारे रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो जब ये ख़बर हमें मिलती है तो ख़बर तो नबा आ, मैंने आपको बताया, ये तो एक नॉलेज है, हमें किसी ने बताया कि ये फौत हो गए, गुजर गए। अंडरस्टैंडिंग ये है जी, अंडरस्टैंडिंग क्या है, मौत की अंडरस्टैंडिंग क्या है। सबसे पहली बात जो मौत के बारे में आप यकीन करें, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, कुरान में अल्लाह ने जगह जगह ये कहा है, फिर तुम्हें लौट के हमारे पास ही आना है। तो मैं ये कहती हूँ, यानी कि मैं तो आपको ये कहूँ ना कि प्लीज़ मेरे ये वर्ड्स आप माइंड ना करें, मैं आपको एक दोस्त की हैसियत से कह रही हूँ, हम सब स्टूडेंट्स हैं, मैं आपकी कोई प्रोफेसर कोई टीचर नहीं हूँ, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम अल्लाह का दीन सीख रहे हैं, अच्छी बातें सीख रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं। तो मैं, मुझे तो अल्लाह से एक ऐसी मोहब्बत है ना कि जैसे नहीं होता आपको किसी पर क्रश हो जाता है और आप कहते हैं कि बस उफ़ अल्लाह ये तो मुझे कहीं मिल जाए ना, बस ये मुझे कहीं मिल जाए। तो अल्लाह से मैं कहती हूँ कि जब अल्लाह बार बार कुरान में कह रहा है कि फिर तुमने लौट के हमारे पास ही आना है, तो ये मौत तो कोई इतनी बुरी चीज़ तो नहीं हो सकती कि मैं अल्लाह के पास जा रही हूँ, अपने प्यारे अल्लाह के पास, जिसने मुझे इतना तैयार करके और इतना अच्छा बना के और इतनी नेमतों के साथ उसने मुझे दुनिया में भेजा था। तो एक तो बड़ी ही खुशी की बात है, वो गिलगित हुंजा में लोग जो हैं एक्चुअली मौत बड़ी सेलिब्रेट करते हैं और ढोल बजाते हैं और खुशियाँ, यकीन करें बचपन से लेके अभी तक मैं ये सोचती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है, वो खुशी की बात है कि ये फौत हो गया, अल्लाह के पास चला गया, ठीक है। बट एनीवे मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं किसी को दुख की बात है, एक बिछड़ जाना जो है बहुत एक इट्स अ ट्रेजेडी, लेकिन हम अल्लाह के पास चले जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात मैं कर रही हूँ। दूसरी बात क्या है कि ये इतने तकलीफ़ में थे, अल्लाह इनको इतने इंजेक्शंस रोज़ाना लगते थे और इतने बड़े बड़े वो लंबी लंबी नीडल्स वो डालते थे और उससे वो उनकी डायलिसिस करते थे, और इतने तकलीफ़ में थे और इतनी अजियत में थे, वो खुद ही हर वक्त अपने आप को बद्दुआएं देते थे। तो अब तो वो एक ऐसी जगह पे चले गए हैं ना जिसमें कुरान में लिखा हुआ है कि वो वहाँ पे बाग ही बाग हैं और नहरें बह रही हैं और दूध की और शहद की और पता नहीं कौन कौन से जूस की नहरें हैं, और लोग जो हैं तो वो अपनी स्टिक्स से अपनी नहर खुद ही अपने लिए खोद लेंगे, अपने लिए ले आएंगे, और वहाँ पे उनको ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, और उनको कीमती कीमती प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहनाए जाएंगे और उनको प्यारे प्यारे कंगन पहनाए जाएंगे, और वहाँ पे कोई दर्द नहीं होगा, वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे तो कोई नॉनसेंस बात भी नहीं होगी। यानी अगर कोई ये एक बात मुझे कह देना कि जन्नत में आप कोई बेहंगम बात नहीं सुनेंगी, तो मैं सब कुछ अपना बेच के ख़त्म करके मैं कहूँगी मुझे जन्नत चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, जहाँ पे बेहंगम बातें ना हों और लगव बातें ना हों और फजूल बातें ना हों, बस वो जन्नत है। तो इतने बड़े बड़े इनाम अल्लाह ने लिखे हैं कि जब ये हमारा बंदा हमारे पास वापस पहुंचेगा और इसके आमाल अच्छे होंगे तो हम इसे ये चीज़ें देंगे, ये इनाम देंगे। और फिर सबसे बड़ा इनाम क्या है कि वहाँ पे हम अल्लाह को देखेंगे और वहाँ पे हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे और सब सहाबा को देखेंगे कि उनकी शक्लें कैसी थीं और वो बात कैसे करते थे। तो इससे ज़्यादा प्यारी बात क्या हो सकती है, इससे ये अंडरस्टैंडिंग है, ये वो अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए कुरान में ये है ना कि जब इनको कोई दुख की खबर मिलती है, जब इन्हें कोई लॉस होता है, तो उनका बस सिर्फ यही कहना होता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये आप देखें, ये सब्र का कलमा नहीं है, ये खुशी का कलमा है। ये जब इन्हें कोई गम की खबर मिलती है तो इनका और कुछ नहीं इनका कहना होता, यानी चीखते चिल्लाते नहीं हैं, शिकायतें नहीं करते, सीना नहीं कूटते, मुँह नहीं कूटते अपना, ये कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही की तरफ से हैं और हमें अल्लाह के पास ही जाना है, हमें लौट के वहीं जाना है, और ये बड़ी खुशी की बात है। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें हैं, और क्या सबसे बड़ी रहमत क्या है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इन पर कोई डर होगा और ना ही ये कभी हुज़्न करेंगे, ना ही ये कभी गम करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मुख्तसरन तीसरा हिस्सा मैं आपके सामने बोलती हूँ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का, कि हमारी एक आम नॉलेज है कि जी शादी होनी चाहिए, हम जी बच्चियों की शादी होनी चाहिए, मेरी बहन की शादी हो जाए, मेरी अपनी शादी हो जाए, बस शादी हो जाए। ये हमारी नॉलेज है ना कि एक सोशल ये तुझे सुन्नत है और शादी ज़रूर होनी चाहिए। हमें अंडरस्टैंडिंग है कि शादी क्यों होनी चाहिए, यानी शादी का मकसद क्या है, निकाह का मकसद क्या है। निकाह का मकसद है औरत को एक कफील देना, औरत को एक ऐसा पार्टनर देना जो बाप के और भाई के बाद उसकी हिफाजत करे, उसका वो मुहाफिज हो, उसका सस्टेनर हो, उसको मेंटेन करने वाला हो, उसका ख़र्चा उठाने वाला हो, उसको सहारा देने वाला हो, उसके बच्चे पालने वाला हो, आगे नस्ल चलानी है, घर बनाना है। शादी का मकसद घर बनाना है। तो आप मुझे ये बताएं, आजकल सब ने शादियाँ अटेंड की भी होंगी और अब आगे सर्दियों में आ रहा है शादियों का सीज़न, बेहंगम हरकतों का सीज़न, अल्लाह माफ़ करे। तो हम जिस तरह शादियाँ कर रहे हैं और जिस तरह हम रिश्ते करते हैं, क्या उससे हमारा ये मकसद पूरा हो सकता है? क्या उससे एक देखें कि जब हज़रत आदम को अल्लाह ने बीबी हवा की ख़बर दी कि हमने तुम में से तुम्हारा जोड़ा बनाया है, ले तस्कुनु फीहा, ताकि तुम सुकून पाओ उसमें। तो आजकल की ये जो हम बच्चियाँ अपनी ट्रेन कर रहे हैं और जैसे बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं, क्या ये एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बन सकते हैं? हमें नॉलेज तो है कि इन बच्चियों और बच्चों की आपस में शादी करनी है, लेकिन क्या हमें अंडरस्टैंडिंग है कि ये शादी हमने क्यों करनी है, और क्या ये बच्चे और बच्चियाँ एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बन भी सकते हैं या नहीं, और एक दूसरे के लिए सुकून का बायस कोई कैसे बनेगा? शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि आराम एक ऐसी चीज़ है जो हम ख़रीदते हैं, जो हम और जगहों से लाते हैं, जिसके हम सामान ढूंढते हैं, लेकिन सुकून एक ऐसी चीज़ है जब हम किसी को सुकून देते हैं तो फिर हमें सुकून मिलता है। तो क्या हम अपने बच्चों को ये बात समझाते हैं? नॉलेज तो हम उन्हें दे देते हैं, हाँ आप हमारी प्रिंसेस हैं और आप हमारे किंग हैं और आप हमारी डिज्नी वर्ल्ड की शहज़ादी हैं और आपका पिंक बेडरूम है और आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है और आप बड़े हैंडसम हैं और आपको हम लॉन्ग बूट्स ख़रीद कर देंगे। ये तो हम अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं। हम कभी अपने बच्चों को सुकून देने वाला हमने कोशिश की है बनाने की? कभी हमने उनके सामने ऐसी मिसालें कायम की हैं? आओ बेटा जी, हम जाते हैं, हम मरीज़ों से वैसे ही अननोन मरीज़ों से मिलते हैं और हम उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं क्योंकि इसी में सुकून है। कभी हमने ये किया है? कभी हमने ये कहा है कि बच्चे ईद के दिन ना जब हम फारिग हो जाएंगे तो हम एक दो घंटे के लिए बच्चों के वार्ड में जाएंगे या बूढ़ों के वार्ड में जाएंगे? और मेरी एक सहेली थी, मुझे ऐसी याद आ गया, जो जाके बूढ़ों के वार्ड में तोहफे नहीं लेके जाती थी, कहती थी नहीं नहीं डॉक्टर अफशां, गिफ्ट नहीं मैंने लेके जाने, मैंने उनसे बातें करनी है। और वो कहती थी मैं बूढ़ों के वार्ड में जाके शाम वहाँ गुजार के आती हूँ और मैं सबसे बातें करती हूँ, सबको किस्से कहानियाँ सुनाती हूँ, उनके साथ चाय पीती हूँ। ये भी एक अंदाज है ना किसी को सुकून देने का। तो ये बातें जो हैं ये नॉलेज में नहीं है, ये बातें अंडरस्टैंडिंग में हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग हमें कहाँ से मिलती है? ये डीप प्रोसेसिंग से मिलती है, जब हम अपनी नॉलेज को प्रोसेस करते हैं। इसी तरह और इतनी अब सिंपल आखिर में, यानी कि जब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि अपने इर्द गिर्द डिग्रियों की भरमार देखें आप, इतने ज़्यादा इंजीनियर हैं, इतने ज़्यादा अकाउंटेंट हैं, इतने ज़्यादा MBA हैं, और फिर आप अपने इर्द गिर्द इलम का हाल देखें, एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखें, FSC के नंबर जो बच्चे हज़ारों में आज ले रहे हैं, यानी हम एड़ियाँ रगड़ रगड़ के 700 और 800 तक पहुँचते थे और फिर पागलों की तरह नाचते थे कि अब हम डॉक्टर बन जाएंगे, वहाँ बच्चे जो हैं आज 900 लेके रोते हैं कि हमारे 1000 नंबर नहीं आए। लेकिन आप उन बच्चों की अंग्रेज़ी देखें, आप उनके मैनर्स देखें, आप उनकी इस्लामियात की नॉलेज देखें, आप उनकी हिस्ट्री की नॉलेज देखें, कुछ नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ, मैंने देखा है इन बच्चों का हशर, उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर ये है कि हमने हर एक चीज़ नॉलेज को मान लिया है और हमने अंडरस्टैंडिंग को छोड़ दिया है। हर एक ट्रेजेडी में, हर एक मसले में, जो चीज़ आपको गम दे, जो चीज़ आपको हुज़न दे, उसमें आप ये सोचें कि अल्लाह ताला जो है, जिसने मुझे इन हालात में पहुंचाया है, वो तो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो कैसे गलती कर सकता है, वो कैसे ज़्यादती कर सकता है। अल्लाह ने तो कुरान में ख़ुद कहा है कि मैं सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला हूँ, मैं सबसे ज़्यादा आदिल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ठीक हिसाब करने वाला हूँ, तो वो कैसे मेरे साथ ज्यादती कर सकता है। और जब और अल्लाह ने, मैं तो इस एक लम्हे को देख रही हूँ ना जिसमें मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, जिसमें मुझे कोई हुज़न हो गया है, लेकिन अल्लाह ने तो जब से वो बिग बैंग से भी पहले, पता नहीं कब से लेके तो क़यामत के बाद और उसके बाद तक, अल्लाह ने तो पूरी तकदीर बनाई हुई है। एवरी थिंग इज़ कैलकुलेटेड एंड अकाउंटेड फॉर एंड इट इज़ क्लियर। तो इस एक लम्हे में जो चीज़ मुझे गलत लग रही है, करोड़ों करोड़ों इम्कानात हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्कानात हैं कि मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि अल्लाह कभी गलत नहीं सोच सकता। अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया है वो उसमें गलती हो ही नहीं सकती। अल्लाह नेवर मेक्स मिस्टेक्स, अल्लाह इज़ नेवर अनफेयर। हैं जी, द वर्ल्ड मे बी रियली अनफेयर एंड द वर्ल्ड एंड द पीपल आर वेरी अनफेयर, बट अल्लाह इज़ नॉट अनफेयर। हैं जी, तो अपनी लॉ अल्लाह से लगानी है, अपनी रूह जो हमारे अंदर वो अल्लाह का अमर छुपा हुआ है ना, उसको अल्लाह के साथ कनेक्ट करें। और उसका फॉर्मूला अल्लाह ने क्या बताया है, अल्लाह ने खुद ही कहा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर दिलों का इत्मीनान नहीं है, हो ही नहीं सकता। और अल्लाह का ज़िक्र क्या है, हमारे पास कुरान है। अब कुरान पढ़ें, कुरान समझें, कुरान पढ़ाएं, कुरान के साथ जुड़ जाएं, फिर आप, ये वो 1,00,000 रुपए का फॉर्मूला है जिसके मैं आपसे कोई 1,00,000 रुपए नहीं मांगती, चलें मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। ये वो फॉर्मूला है जिसमें हर एक गम से बचने का इलाज और हर एक गम को ख़त्म करने का इलाज लिखा हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान वाला बना दे, और इंशाल्लाह मज़ीद सेशंस के वादे के साथ फिर कल मिलेंगे। आमीन सुम्मा आमीन।